अध्याय 5 अपने ही समाज के अध्ययन के संबंध में कुछ विचार। पिछले अध्यायों में मैंने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के कुछ पक्षों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अब मैं संक्षेप में कुछ उन रीति रिवाज संबंधी बातों पर विचार करूंगा जो स्वयं अपने ही समाज के अध्ययन से उत्पन्न होती है, विशेषकर जब उस समाज का द्रुत रूपांतरण हो रहा है। ऐसा करने के लिए मुझे अपना और अपने कार्य का हवाला देना होगा, और यद्यपि यह संकोच की बात है, फिर भी मुझे आशा है कि इस कार्य से मेरे लिए और शायद दूसरों के लिए भी कुछ ऐसी समस्याओं का स्पष्टीकरण हो सकेगा जिनका अपने ही समाज के अध्ययन में लगा व्यक्ति सामना करता है, या शायद मेरे अन्य सहयोगियों को भी ऐसे ही प्रयास की ओर प्रेरित करें, ताकि जिस काम में हम लोग लगे हैं उसके विषय में अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त हो सके। विशेषकर इसलिए भी इस काम में निकट भविष्य में विकासशील देशों के अधिकाधिक अध्येताओं के भाग लेने की संभावना है। मेरे कार्य का अपने देश के बाहर जो स्वागत हुआ है उस पर नजर डालते ही एक बात मुझे यह लगती है कि बार बार अपने ही समाज के अध्ययन में लगे भारतीय समाजशास्त्री के रूप में मेरा हवाला दिया गया। एक विचार यह था कि इस कारण मुझे बड़ी सुविधा रही। एक अन्य यह था कि जब भी मैं यह भूल सका कि मैं सामाजिक मानव वैज्ञानिक हूँ, मेरा वर्णन और पुनर्व्याख्या बेहतर हो सकी। और एक तीसरा यह रीति विधान संबंधी प्रश्न उठता था, कोई समाजशास्त्री स्वयं अपने ही समाज को किस हद तक समझ सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने मेरी कुर्ग संबंधी पुस्तक की भूमिका लिखते समय पहला विचार अपनाया था। यह पुस्तक एक प्रशिक्षित मानव वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है जो स्वयं भारतीय है, और इसलिए उसे भारतीय चिंतन पद्धतियों की ऐसी समझ है जो किसी यूरोपी के लिए वर्षों में भी प्राप्त करना कठिन होता है। फलस्वरूप यह पुस्तक एक विशेष भारतीय समुदाय के धार्मिक आचरण का वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत करती है। टाइम्स साहित्यिक परिशिष्ट के समीक्षक ने दूसरा विचार अपनाया था, ब्राह्मण भी है और मानव वैज्ञानिक भी, और वे कुर्गों को दोनों दृष्टियों से देखते हैं। शायद सबसे सफल वे वही होते हैं जहां वे भूल जाते हैं कि उन्हें सामाजिक मानव विज्ञान की भाषा में लिखना है, और अपने दूसरे व्यक्तित्व को सुसंस्कृत भारतीय नगरवासी को अपने देश के कुछ किसानों के जीवन का वर्णन और व्याख्या करने देते हैं। तीसरे विचार को मेरी पुस्तक आधुनिक भारत में जाति की समीक्षा में E.R. Leach ने सशक्त रूप में व्यक्त किया है। प्रोफेसर श्रीनिवास के सामने सामान्यतः हिंदू धर्म और विशेषकर ब्राह्मणवाद के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन्हें वे भीतर से जानते हैं, पर जिन्हें विद्वान से यूरोपी भी कभी नहीं जान सकता। पर समाजशास्त्री विश्लेषण की दृष्टि से यह एक सुविधा है या असुविधा। भारतीय समाजशास्त्र में प्रोफेसर श्रीनिवास का एक अत्यंत उल्लेखनीय योगदान है संस्कृतिकरण की अवधारणा का विकास। इस अवधारणा की मूलभूत विषय वस्तु है कि सामाजिक सोपान में नीची जाति समूहों में उच्च जाति के ब्राह्मणों की जीवन शैली के अनुकरण की दीर्घकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे जातियों के संपूर्ण सोपान में अस्थिरता का समावेश होता है। ऐसी अस्थिरता मौजूद है, यह तो स्पष्ट दर्शाया गया है, पर यह कहना कि वह ब्राह्मणों के अनुकरण से उत्पन्न होती है मुझे अजीब, एक विशेष रूप से ब्राह्मण केंद्रित दृष्टिकोण लगता है। यदि प्रोफेसर श्रीनिवास शूद्र होते तो क्या यह बात उनकी व्याख्या को प्रभावित करती। मेरे दक्षिण भारत से बाहर के भारतीय सहयोगियों ने मुझसे कहा है कि पवित्रता अपवित्रता कर्म कांड संस्कृतिकरण जाति और पिछड़ी वर्ग आंदोलन में उलझने का कारण मेरा दक्षिण भारतीय होना है। उनका विचार है कि ब्राह्मणों तथा दूसरों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी दक्षिण में अधिक है, अपवित्रता की धारणाओं का वहाँ अधिक विस्तार हुआ है, और पिछड़े वर्ग आंदोलन केवल दक्षिण की ही विशेषता है। एक उत्तर भारतीय सहयोगी तो जोर देकर कहते हैं कि संस्कृतिकरण पर बंगाल में उनकी नजर ही नहीं पड़ती और तमिलनाडु में उनका नजर से बचना संभव न था। उसके अनुसार बोली जाने वाली भाषा का संस्कृतिकरण द्रविड़ भाषाभाषी क्षेत्रों में अधिक सुस्पष्ट है, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप दो विभिन्न भाषा परिवारों के शब्द और भाषा रूपों का समाजीकरण होने लगता है। जिन क्षेत्रों में कोई एक भारतीय आर्य परिवार की भाषा प्रचलित है, वहाँ बढ़े हुए संस्कृतिकरण से वैसी असंगति नहीं उत्पन्न होती। संस्कृतिकरण शब्द सबसे पहली बार मेरी कुर्ग विषय पुस्तक में प्रस्तुत हुआ है, पर इस धारणा के बीच शायद मेरे स्नातकोत्तर डिग्री के प्रबंध मैसूर में विवाह और परिवार में ही है, जो 1942 में प्रकाशित हुआ था और अब सौभाग्य से अनुपलब्ध है। वह मुख्यतः मैसूर के संबंध में प्रकाशित एक अन्य ग्रंथ के अध्ययन पर आधारित था। मेरे जैसा अनुभव शून्य शोधकर्ता भी, जो मैं उस समय था, यह देखे बिना न रह सकता था। गैर ब्राह्मण संस्थाएं तो उदार थी, पर ब्राह्मणों की संस्थाएं नहीं थी, और आमतौर पर जिस जाति का कर्मकांडी स्थान जितना नीचा होता है उतनी ही अधिक संस्थाएं उदार होती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी जाति की ऊर्ध्वमुखी गति के साथ अन्य बातों के अतिरिक्त तलाक और विधवा विवाह पर रोक लग जाती। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जाति सांस्कृतिकीय प्रभाव से जितनी दूर होती है वह इन आदर्शों को उतना ही कम सम्मान करती है, पर उच्च जातियों का अनुकरण प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही संपूर्ण कन्नड़ समाज उन उच्चतम जातियों को छोड़कर जिनमें पुराने आदर्श टूट रहे हैं उन आदर्शों की दिशा में बढ़ चलेगा। जब मैं दक्षिण भारत के कुर्गों में क्षेत्र कार्य कर रहा था तो मूलतः मेरी रुचि उनकी पारंपरिक संस्कृति के पुनर्निर्माण में ही थी, और इसके परिणाम स्वरूप मैं उन परिवर्तनों को देख न सका जो कुर्ग समाज में हो रहे थे। यह तो ऑक्सफोर्ड पहुंचकर रेडक्लिफ ब्राउन के सुझाव पर ही मैंने अपनी कुर्ग कर्मकांड विषय सामग्री पर संरचनात्मक कार्य मूलक दृष्टिकोण से विचार किया। तब मैं यह निष्कर्ष निकाले बिना न रह सका कि कुर्ग धर्म हिंदू धर्म का ही एक प्रकार था, और हिंदू धर्म में बहुत से स्तर हैं जिन्हें मैं स्थानीय, प्रादेशिक, प्रायद्वीपीय और अखिल भारतीय संज्ञाएं दी। अखिल भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति हिंदू धर्म की पर्यायवाची था। कुर्ग रीति रिवाजों का शताब्दियों से संस्कृतिकरण होता रहा था, जिसके दो महत्वपूर्ण साधन थे लिंगायत और ब्राह्मण। कुर्गों की जीवन शैली पर लिंगायतत्व का प्रभाव की चेतना एक महत्वपूर्ण कारण था। मैंने संकीर्ण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा संस्कृतिकरण शब्द पसंद किया। इस भांति अपनी कुर्ग विषय पुस्तक में मैंने लिखा, केवल ब्राह्मण पुरोहित ही सदा संस्कृतीय हिंदू धर्म का साधन नहीं होता। कन्नड़ देश के प्रत्येक भाग में और कुर्ग में लिंगायत संप्रदाय ने भी, जिसमें केवल गैर ब्राह्मण ही हैं, अतीत में संस्कृतिकरण का प्रभाव डाला है। लिंगायत कर्मकांड संस्कृतीय है, यद्यपि वैदिक नहीं, और कुर्ग के लिंगायत राजा कुर्गों के रीति रिवाजों और तौर तरीकों और संस्कारों के संस्कृतिकरण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक दिन सवेरे मस्तक पर त्रिपुंड विभूति लगाना, शिवरात्रि का त्योहार मनाना और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की समाधि शिला लगाकर उसके मस्तक पर नदी की आकृति बैठाना आदि रीतियों में लिंगायत प्रभाव प्रकट होता है। इसलिए लीस का यह आग्रह कि मैं संस्कृतिकरण को ब्राह्मणों के अनुकरण से उत्पन्न कहता हूँ ठीक नहीं है, किंतु मेरे ब्राह्मण होने ने कुर्गों के मेरे पर्यवेक्षण और समझ को कोई अन्य प्रकार से प्रभावित किया। कुर्ग संबंधी पुस्तक में कुर्गों और मैसूरी ब्राह्मणों के बीच कहीं कहीं स्पष्ट पर अधिकांशतः निश्चित रूप से तुलना की गई है। एक स्पष्ट तुलना का उदाहरण है न केवल विधवाओं को बल्कि पुनर्विवाहित विधवाओं को भी शुभ कृत्यों से अलग रखा जाता है, पर यह बहिष्कार कुर्गों में उतना संपूर्ण नहीं है जैसा उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में होता है। किंतु किसी दूसरे समाज को अथवा अपने ही समाज में किसी अन्य वर्ग या युग को समझने की प्रक्रिया में तुलना अनिवार्य जान पड़ती है। समस्त नया सामाजिक अनुभव सामाजिक संस्थाओं मूल्यों और धारणाओं के ज्ञात और समझे हुए ढांचे के पहले से मौजूद आधार से जोड़ा जाता है। जैसा मैंने पहले कहा है कि संस्कृतिकरण का आदर्श ब्राह्मण और लिंगायत दोनों से प्राप्त हुआ था। जैसा कि पोकाक और सिंगर ने इशारा किया है, क्षत्रिय और वैश्य आदर्शों को मैं अवश्य छोड़ गया था, पर यह ब्राह्मण केंद्रिता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए मैं मैसूर प्रदेश में ऐसी क्षत्रिय और वैश्य जातियां नहीं है जिनकी जीवन शैली ब्राह्मण या लिंगायतों की जीवन शैली से सुस्पष्ट भिन्न हो। अरसु कन्नड़वासी क्षत्रिय स्वयं ब्राह्मणों और लिंगायतों से प्रभावित रहे हैं, और कोमति तेलुगु भाषी वैश्य ब्राह्मणों से। परंपरा से दोनों ही शाकाहारी और मदिरा त्यागी हैं, और विभिन्न संस्कारों के समय ब्राह्मण पुरोहित को ही बुलाते हैं। अब मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अपनी कुर्ग विषय सामग्री के विश्लेषण के समय पश्चिमीकरण का महत्व मैं कैसे न पहचान सका। यह निश्चय ही मेरे ब्राह्मण होने के कारण नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की संपूर्ण उपेक्षा करके कुर्ग समाज के पारंपरिक पक्षों पर ध्यान केंद्रित रखने के कारण था। एक अर्थ में 1940 के बाद कुर्गों की जीवन शैली मैसूरी ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक पश्चिमीकृत थी। मगर 1954 में ही जब मिल्टर सिंगर ने के सुझाव पर मैंने अपना निबंध संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक टिप्पणी लिखना शुरू किया, तब पश्चिमीकरण का महत्व और संस्कृतिकरण से उसके संबंध सूत्र अचानक मेरे सामने स्पष्ट हो गए। मैंने यह पाया कि जिस प्रकार मैसूरी ब्राह्मण तेजी से अपना पश्चिमीकरण कर रहे थे, उसी तरह कर्म कांड की दृष्टि से उनसे नीची जातियां संस्कृतिकरण की ओर बढ़ रही थी। गोल्ड ने उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों के बारे में भी ऐसी ही प्रक्रिया की सूचना दी है, किंतु यह प्रक्रिया का केवल एक पक्ष है और अन्य तथा इसमें रुकावटें डालने वाली प्रक्रियाएं भी हैं। पश्चिमीकरण वक्त के साथ अधिक व्यापक, अधिक गहरा और अधिक प्रबल होता जा रहा है और इस कारण उसके तथा संस्कृतिकरण के बीच गतिशील संबंध के निरंतर परीक्षण की आवश्यकता होगी। ड्यूमा और कोकाक के ने इशारा किया है कि मैंने प्रभुता की धारणा अफ्रीकी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आरोपित की है। मैंने प्रभु जाति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले अपने निबंध मैसूर के एक गांव की समाज व्यवस्था में किया था और यह संभव है कि अचेतन रूप में मैंने अफ्रीका संबंधी समकालीन मानव विज्ञान विषयक साहित्य में प्रभु कुल की और कुल घरानों के उल्लेखों से प्रभावित हुआ हूँ। पर एक अर्थ में कुर्ग विषयक पुस्तक भी एक प्रभु या प्रमुख जाति के बारे में है और वहाँ प्रभु जाति की धारणा की स्थापना केवल एक ही कदम आगे है। इसके अतिरिक्त जब मैं 1948 में रामपुर में क्षेत्र कार्य कर रहा था तो उक्कलीगों की प्रभुता ने मेरे ऊपर भारी प्रभाव डाला था। जो थोड़े से ब्राह्मण वहाँ रहते भी थे वे संपूर्णतः बल्कि दयनीय रूप में प्रबल उक्कलीग भूस्वामियों पर निर्भर थे। रामपुर और पड़ोस के गांवों के बुजुर्गों से बातचीत करके मेरी यह धारणा बनी थी कि पहले महायुद्ध के समय तक भी अविकसित संरचना व्यवस्था और गांवों के मामले में राज्य के प्रभावकारी ढंग से दखल न देने के कारण गांव के स्तर पर स्थानीय प्रभु जातियों के पास बहुत सत्ता और स्वायत्तता थी। यह धारणा एन राम राव की पुस्तक केलवु नेन युगलु में पढ़ने पर और भी स्पष्ट हुई। यह उन दिनों के संस्मरणों की अनुपम पुस्तक थी जो राम राव इस क्षेत्र में अमिलदार एक तालुक के अधिकारी थे। गांव में सरकारी अधिकारी कभी कभी ही जाते थे। आम जनता उनके आगमन को स्वागत की दृष्टि से न देखती थी और गांव वाले उनकी बहुत चिंता किए बिना अपने काम काज में लगे रहते थे। प्रभु जातियों के प्रधान छोटे मोटे सामंत सरदारों की भांति होते थे और साधारणतः लोगों में उनके लिए भय और आदर का भाव रहता था। प्रत्येक प्रधान एक गुट का मुखिया होता था जिसमें संगोत्र व्यक्ति जाति वाले अन्य जातियों के आसामी होते थे और प्रतिद्वंदी गुटों के मुखियों के बीच संबंध स्पष्ट ही मैत्रीपूर्ण नहीं होते थे। प्रभु जाति संस्कृतिकरण का स्थानीय साधन भी हो सकती थी अथवा उसके प्रसार में बाधक भी। इसलिए स्थानीय प्रभु जातियों के अध्ययन विवरण प्रादेशिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझने के लिए आवश्यक था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु जातियों की शक्ति प्रभाव और प्रतिष्ठा की प्रतीति से समाज वैज्ञानिक के लिए हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में अभिव्यक्ति धारणाओं और भावनाओं को एक नए रूप में देखना संभव हो जाता है। कोई ब्राह्मण किसी किसान प्रभुता वाले गांव में जाकर भू देवता की भांति आचरण करे तो उसे सचमुच परेशानी में पड़ना पड़ेगा। क्षेत्र कर्मियों के लिए मनु उत्तम मार्गदर्शक नहीं। भारत में शहरी तथा उच्च जाति समाज वैज्ञानिकों को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। अंत में पिछड़े वर्ग आंदोलन के महत्व पर तथा राजनीति और प्रशासन में जाति के स्थान पर मेरा बल देना बहुत संभव है। मेरे दक्षिण भारतीय और उस पर भी ब्राह्मण होने का परिणाम है प्रशासन की नौकरियों पर नियुक्तियों के लिए और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षाओं में प्रवेश के लिए जातियों के निश्चित अंश के सिद्धांत में मैसूरी ब्राह्मणों में बड़ी कटुता उत्पन्न हो गई थी। उनमें से कुछ मेरे मित्र और रिश्तेदार भी थे और मैंने उनकी मुसीबतों से प्रभावित हुए बिना न रह सकता था और न शैक्षिक क्षेत्रों तथा प्रशासन में कार्य कुशलता में निरंतर गिरावट और वैयक्तिक संबंधों में बिगाड़ थे, जो दोनों ही जाति विषयक आरक्षण की नीति के परिणाम थे। आंख मूंद सकता था। मैसूर से गहरे लगाव के कारण मैं इस बात से भी प्रभावित हुए बिना न रह सकता था कि जातियों के बीच संघर्ष के कारण राज्य के सब वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक साधनों के विकास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना संभव न हो पाता था। किंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि पिछड़े वर्ग आंदोलन के बावजूद विभिन्न जातियों के लोगों में अक्सर बड़ी गहरी मित्रता भी होती थी। कभी कभी ऐसी मित्रताएं पूरे परिवारों के बीच होती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। यह मेरा सौभाग्य था कि मेरे मूल परिवार की विभिन्न जातियों, संप्रदायों और धर्मों के लोगों से घनिष्ठ मित्रता थी और इस कारण मैं पिछड़े वर्ग आंदोलन को कुछ तटस्थता के साथ देख सका। मैंने यह भी देखा था कि ब्राह्मणों के जाति केंद्रीय वक्तव्यों से संवेदनशील गैर ब्राह्मण किस प्रकार क्षुब्ध होते थे। पिछड़े वर्ग आंदोलन का स्वरूप जनता के हाथ में सत्ता आते ही बदल गया। सर्वव्यापी बालिक मताधिकार पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र में जाति समूहों की संख्या निर्धारित हो गई और केवल आर्थिक शक्ति तथा शिक्षा के ऊपर आधारित प्रभुता पर्याप्त नहीं रही। हर जगह प्रभु जातियां अपने उन उपभेदों की उपेक्षा करके अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगी जिन्हें पहले महत्वपूर्ण माना जाता था, किंतु कभी कभी जाति की संख्या संदर्भ के अनुसार बदलती थी। उदाहरण के लिए राजनीतिक संदर्भों में उपभेदों की अपेक्षा की जाती थी पर विवाह के लिए उनका महत्व बना रहता था। इसका एक तीव्र उदाहरण गुजरात क्षत्रिय सभा में मिलता है। इसमें राजपूत और कोली दोनों हैं, जो अलग अलग जातियां हैं और कोलियों की निश्चित रूप से राजपूतों से नीचा माना जाता है। लीच ने प्रश्न किया है कि समाज वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से समाज वैज्ञानिक के लिए स्वयं अपने ही समाज का अध्ययन करना सुविधाजनक दृष्टि से ठीक है अथवा असुविधाजनक। जो भी असुविधा हो वह निश्चित रूप से इतनी बड़ी तो नहीं हो रही है कि समाज विज्ञान के अनुशासन के उदय होने में बाधक हो सके। मार्क्स, वेबर, मैनहीम और बहुत अन्य समाज वैज्ञानिक स्वयं अपने ही समाज के अध्ययन में निरंतर लगे रहे हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि अपने ही समाज का अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिक को सुविधाएं भी होती हैं और असुविधाएं भी। और शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि असुविधाओं को यथासंभव कम करने और सुविधाओं को बनाए रखने का पक्का प्रबंध किया जाए। यह समस्या तात्कालिक है क्योंकि विकासशील देशों के अधिकाधिक समाज वैज्ञानिकों ने निकट भविष्य में ही अपने समाजों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने की संभावना है। अपने ही समाज का अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिक के लिए यह संभावना है कि वह न केवल अपने अवलोकनों में बल्कि अध्ययन के लिए समस्याओं के चुनाव में भी अपनी सामाजिक स्थिति से प्रभावित हो जाए। पर यह जरूरी नहीं कि उससे सदा भूल ही हो, यह अंतर्दृष्टि का भी साधन हो सकता है, किंतु अंतर्दृष्टियों के प्रामाणिक सामान्य सिद्धांत बनाने के पहले उनका कठोर परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई धारणा केवल इस कारण आवश्यक रूप से गलत नहीं हो सकती कि उसका जन्मदाता समाज में किसी विशेष स्थान पर है। उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता स्वतंत्र रूप से स्थापित करनी पड़ती है। बर्नार्ड शाह के शब्दों में विवेकशीलता की कसौटी पद्धति की सामान्यतया नहीं उपलब्धि का तर्क संगत होना है, किंतु अपने कार्य को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अपनी धारणाओं और रुचियों का परीक्षण करना और उन्हें अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक इतिहास से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आत्मनिष्ठ होने की चेतना मात्र और उन क्षेत्रों तथा रूपों की चेतना जिनमें वैसा होने की सबसे अधिक संभावना है, अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने की दिशा में आगे चरण है। पर केवल वही पर्याप्त नहीं है, उसकी कई अन्य उपायों द्वारा पुष्टि आवश्यक है। एक सहज उपाय है कि समस्या का किसी एक समस्या का विभिन्न पृष्ठों भूमियों वाले बल्कि विभिन्न देशों के समाज वैज्ञानिक अध्ययन करें। समाज विज्ञान में अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए पेशेवर लोगों
में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है, क्योंकि आत्मनिष्ठता और उसका प्रभाव गंभीर होता है, इसलिए उसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है उसके अस्तित्व की स्वीकृति और अध्येता और उसके शैक्षिक जीवन के आरंभ से ही अजनबी समाजों की संस्कृति और संस्थाओं का अनुभव सुलभ करना। इस संदर्भ में ही समाज वैज्ञानिक और समाज मानव विज्ञान के बीच पारंपरिक किंतु तर्कहीन अंतर इतना अनिष्टकर है। समाज के सच्चे विज्ञान में देश और काल में आदिम आधुनिक ऐतिहासिक सभी समाजों का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। यह बात भारतीय समाज के समाज वैज्ञानिक को बड़ी तीव्रता से अनुभव होती है। न केवल भारत का लंबा इतिहास है, साथ ही हरिजन और जनजातियों के लोग सदा ही भारतीय संस्कृति और समाज के अंग रहे हैं। भारतीय समाज के विभिन्न खंडों और स्तरों के बीच पारस्परिक क्रिया निरंतर रही है। कुछ समय बीतने पर जनजाति समूह अपने क्षत्रिय होने के दावे को स्थापित करने में सफल होते रहे हैं और जनजाति कर्मकांड और सामाजिक जीवन के तत्व उच्चतर हिंदू धर्म में प्रवेश पा गए हैं। अपवित्रता की धारणाओं का विस्तार जनजाति समूहों में भी हुआ है और उच्च जातियों में भी, किंतु न्यस्त स्वार्थ वाले लोग फिर भी समाज विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मानव विज्ञान को अलग अलग अनुशासन माने चले जाते हैं। किसी भी समाज का अवलोकन कर सकने के लिए अवलोकनकर्ता में स्वयं अपने समाज से कुछ तटस्थता आवश्यक होती है, और तटस्थता के प्रभावी होने के लिए उसकी भावना और बुद्धि दोनों से संबद्ध होना आवश्यक है। क्षेत्र कार्य, जैसा कि मैं बाद में स्पष्ट करूंगा, ऐसी तटस्थता प्राप्त करने का एक बड़ा पक्का उपाय है। यह सही है कि समाज विज्ञान के इतिहास में कुछ महानतम व्यक्ति स्वयं क्षेत्र शोध के कार्य में कभी नहीं पड़े, पर जिस अनुशासन की स्थापना के लिए उन्होंने इतनी लगन से काम किया वह अब उनके बाद से विकसित होता रहा है, और क्षेत्र शोध ने इस विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। जो हो, यहाँ मेरा विषय साधारण छात्रों को प्रशिक्षण है। प्रतिभावान व्यक्तियों को अपने भरोसे छोड़ा जा सकता है। किसी अजनबी समाज में क्षेत्र कार्य स्वयं अपने समाज के अवलोकन के लिए उत्कृष्ट तैयारी का काम करता है, पर यह अत्यंत व्यवसाध्य है कि और विकासशील देश इतना खर्च न उठा सकेंगे, और परिस्थितियों में सबसे अच्छा यही होगा कि तरुण समाज वैज्ञानिक समाज की किसी ऐसे हिस्से में काम शुरू करे जो उसके अपने समाज से भिन्न हो। यह याद करना अच्छा होगा कि वर्णनात्मक समाज विज्ञान का एक क्लासिक ग्रंथ W.F. White का सड़क के नुक्कड़ का समाज लेखक का पहला अध्ययन विवरण था, और उसके विश्वविद्यालय के पास के समुदाय में ही किया गया था। मध्यवर्गीय परिवार के शहरी भारतीय समाज वैज्ञानिक को भी इसी प्रकार कुछ मील दूर किसी गांव अथवा उसके ही शहर में किसी गंदी बस्ती में एक विस्मयकारी नया सामाजिक लोक मिल सकता है। तीव्र स्तरीकरण व्यवस्था का एक परिणाम है, और उस ऊपरी समूहों में निचली समूहों में किसी संस्कृति और जीवन के विषय में उदासीनता, और भारत जैसे विशाल देश में पर्याप्त प्रादेशिक अनेक रूपता भी है। ये दोनों बातें किसी हद तक भारतीय समाज वैज्ञानिक के लिए किसी अजनबी समाज में पहला क्षेत्र अध्ययन करने के लिए साधनों के अभाव की क्षतिपूर्ति कर देता है। अभी तक मैंने क्षेत्र कार्य की चर्चा की है, जैसे वह कोई एक ही है सधर्मिक प्रकार का होता है। सच बात तो यह है कि ऐसा नहीं है। क्षेत्र कार्य कई प्रकार का होता है। किसी एक अन्वेषक द्वारा एक छोटे से समुदाय या समूह के गहन अध्ययन से लगाकर एक देशव्यापी सर्वेक्षण तक, जिसमें बहुत से अन्वेषक उत्तरदाताओं से वास्तविक भेंट का काम करने के लिए रखे गए हों, और बीच में यह बहुत सी श्रेणियां हैं। आगे जो मैं कुछ कहा जा रहा है उसमें मैंने ध्यान में मुख्यतः गहन क्षेत्र कार्य रखा है, जिसमें सहभागी अवलोकन की पद्धति अपनाई जाती है। पर मैं यह आशा करता हूं कि तमाम क्षेत्र कार्य जिसमें समाज वैज्ञानिक का अपने से भिन्न संस्थाओं, धारणाओं और मूल्यों वाले लोगों के किसी न किसी प्रकार के घनिष्ठ संपर्क में आना निहित है, तटस्थता उत्पन्न करेगा, भले ही गहन क्षेत्र कार्य के समान मात्रा में नहीं। मैं गहन क्षेत्र कार्य की परिभाषा देने का प्रयास नहीं करूंगा, इसके बजाय जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि वह क्या है, उनसे कहूंगा कि वे इवांस प्रिचार्ड की पुस्तक सामाजिक मानव जीवन विज्ञान और व्हाइट की सड़क के नुक्कड़ का समाज में क्षेत्र कार्य पर परिशिष्ट पढ़ें। सफल क्षेत्र कार्य में न केवल समाज वैज्ञानिक द्वारा परिश्रम पूर्वक मानव जाति शास्त्र की सूक्ष्म बातों के विशाल भंडार का संग्रह है, बल्कि यह समझने के लिए कि अध्ययन के अंतर्गत समुदाय का सदस्य होना कैसा लगता है। अपनी परानुभूति की क्षमताओं का उपयोग भी सम्मिलित है। इस मामले में समाज वैज्ञानिक का एक उपन्यासकार की भांति है, जिसके लिए अपने पात्रों की अंतरात्मा के भीतर प्रवेश करना अनिवार्य है। जिस समुदाय या समूह का वह अध्ययन कर रहा है, उसकी कुछ संस्थाएं विचित्र तथा कुछ अन्य बर्बर लग सकती हैं, पर उसे उसी प्रकार देखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे अतिथेय समुदाय का साधारण सदस्य देखता है। कहना आवश्यक नहीं कि इसमें न सिर्फ उसकी बुद्धि बल्कि उसकी भावनाएं भी सम्मिलित हो जाती हैं। अन्य समुदाय के सदस्यों की जगह अपने को रखने की प्रक्रिया में समाज वैज्ञानिक एक हद तक अपने समुदाय से विलग हो जाता है। व्हाइट ने इस कथन में एक आम प्रक्रिया का सारांश ही है, मैंने एक गैर सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप में प्रारंभ किया। जो ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने पाया कि मैं लगभग एक गैर अवलोकनशील सहभागी होता जा रहा हूँ। मुझे कार्नर विले के जीवन का स्पर्श तो मिला, पर उसका अर्थ था कि मैं भी वे सब बातें मानकर चलूं जो मेरे कार्नर विले के बंधु मानकर चलते थे। मैं उसमें डूब गया था, पर अभी तक मैं उसका स्वयं अर्थ बहुत कम ही समझ पाता था। मुझे यह तो लगता था कि मैं कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं, पर अभी मुझे अपने आप को यह समझना था कि वह क्या है। गैर सहभागी अवलोकनकर्ता से सहभागी अवलोकनकर्ता में संक्रमण समाज वैज्ञानिक द्वारा अपनी परानुभूति की सारी क्षमताओं के उपयोग के बिना नहीं हो सकता। जैसा स्टॉर्क ने कहा है, किसी अजनबी समाज के बाहरी खोल के भीतर प्रवेश करने की समस्या केवल अंशतः ही बौद्धिक समस्या होती है, अंशतः ही वह नैतिक भी होती है। बौद्धिक प्रयास तो वह इस बात में है कि बहुत सारी तथ्यात्मक सामग्री का संग्रह और ग्रहण आवश्यक होता है, पर वह एक नैतिक प्रयास भी है, सहानुभूति का प्रयास, जैसा बर्गशाह ने बड़ी विलक्षण सजगता से व्यक्त किया है। क्योंकि जब तक हम उन तथ्यों से संबद्ध लोगों के विचारों को सोचने और भावनाओं के अनुभव करने के लिए पर्याप्त तत्परता न जुटाएं, तब तक हम उस तथ्यात्मक सामग्री से कुछ नहीं पा सकते, वह हमारे हाथों में निर्जीव ही बनी रहेगी। आमतौर पर क्षेत्र कार्य समाप्त होने पर समाज वैज्ञानिक अपने अध्ययन निष्कर्षों को लिख डालने के लिए अपने विश्वविद्यालय को लौट जाता है। इस क्षेत्र आवश्यकता की वह दुनिया भर में उसके सहयोगियों की समझ में आ सके, समाज वैज्ञानिक को अपने पूर्ववर्ती सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप से बाहर निकलने और एक निर्वैयक्तिक विश्लेषणकर्ता हो जाने के लिए बाध्य करती है। यह आसान कार्य नहीं है, जैसा कि कोई भी क्षेत्रकर्मी स्वीकार करेगा। लौटने के बाद पहले कुछ दिनों तक अथवा सप्ताहों तक भी वह हक्का बक्का रहेगा कि किस तरह वह अपने आप को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए। धीरे धीरे गोष्ठियां और भाषण, कक्षा और व्याख्यान कक्ष के बाहर अनौपचारिक चर्चाएं और इन सबसे अधिक एक निर्वैयक्तिक और पेशेवर पाठक वर्ग के लिए अपने अनुभवों के विषय में लिखने की प्रक्रिया ही उसके लिए उस क्षेत्र से कुछ दूरी उत्पन्न कर देगी जिसे वह पीछे छोड़ आया है। किसी अजनबी समाज का अथवा अपने ही समाज के भिन्न खंड का क्षेत्र अध्ययन समाज वैज्ञानिक को अपने ही समाज के अथवा उसके उस खंड के जिसका वह सदस्य है अधिक सूक्ष्म अध्ययन के जटिल कार्य के लिए तैयार करता है। वह अपने समाज को सदस्यों में रहते हुए भी वह किसी हद तक उसे बाहर वाले की भांति देखने में समर्थ हो गया है। उसकी स्थिति अब भी उस उपन्यासकार जैसी है जो अपने लोगों का अवलोकन भी करता है और वह अपने चारों ओर के जीवन में सहभागी भी होता है। किंतु उपन्यासकार से भिन्न समाज वैज्ञानिक की रुचि मुख्यतः मानवीय सामाजिक आचरण की सैद्धांतिक व्याख्या में मूर्त विशिष्टताओं के बजाय सामाजिक सामान्य सिद्धांतों में ही होती है। भारतीय समाज और संस्कृति की अनेक रूपता का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ, पर अनेक रूपता स्थिति का केवल एक ही पक्ष है। मोटे रूप में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एक सांस्कृतिक क्षेत्र है और शताब्दियों से धारणाएं, संस्थाएं और साधन औजार आदि प्रायः देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते और प्रत्येक चरण में बदलते रहे हैं। इस भारतीय देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने और जैसे परिचित लगने वाली वस्तुएं अप्रत्याशित अपरिचित तत्व उजागर करती है, वैसे ही अपरिचित लगने वाली वस्तुओं से परिचित तत्व प्रकट हो जाते हैं। भारत की एकता और अनेकता दोनों को निरंतर ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा यह संभावना है कि किसी गांव या जनजाति को एक विलग तत्व मान लिया जाए। किसी समुदाय का अध्ययन हाथ में लेने के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति का नहीं तो प्रादेशिक इतिहास और संस्कृति का ज्ञान आवश्यक तैयारी है, पर इसे बहुत दूर तक ले जाने की आशंका भी है। और एक अन्य अर्थ में हमारी प्रादेशिक और संपूर्ण देश की संस्कृति का अध्ययन कभी नहीं पर्याप्त हो सकता। वास्तव में किसी गांव या छोटे कस्बे या जाति का अध्ययन संपूर्ण भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन में प्रवेश के लिए बड़ा उपयोगी स्थल प्रस्तुत करता है। वह तरुण अध्येता की को बाध्य करता है कि वह अपना ध्यान समाज के किताबी चित्र की बजाय सामने वर्तमान यथार्थ पर जमाए रखे। वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है, भारतीय इतिहास के विभिन्न यानी किन्हीं विशेष युगों में मौजूद संस्थाओं और धार्मिक साहित्य के बीच क्या संबंध है। इसका संतोषजनक उत्तर प्रादेशिक इतिहास और संस्कृति में वर्षों तक परिश्रम पूर्वक अनुसंधान द्वारा ही पाया जा सकता है। यद्यपि गहन क्षेत्र अध्ययनों का भारतीय समाज के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी यह स्पष्ट है कि उनकी पुष्टि कई प्रविधियों के उपयोग के द्वारा अन्य प्रकार के अध्ययनों से करना आवश्यक है। विस्तृत अध्ययन जिनमें बहुत से कर्मियों का सहयोग आवश्यक होता है और अनुशासन अंत और प्रशासनिक अध्ययन भी आवश्यक है, पर शोधकर्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम यही है कि गहन क्षेत्र अध्ययन विस्तृत अध्ययन के पहले ही हो, बाद में नहीं, क्योंकि वह समाज वैज्ञानिक को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर देता है कि वह एक तथ्य या घटना को उसके संपूर्ण ढांचे में देखे और उन सूक्ष्म तथा दूरस्थ संबंधों को पहचानने जो सीमित तथ्य समूहों अथवा संबंधों के विस्तृत सर्वेक्षणों में प्रायः छूट जाते हैं। तेजी से बदलते हुए और सब विकासशील समाज इसी रूप में बदल रहे हैं, स्वयं अपने समाज का अध्ययन ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता है जिसका सामना करने के लिए समाज वैज्ञानिकों की समस्त बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का सक्रिय होना आवश्यक है। संभव है कि वे परिवर्तन स्वयं उसकी सामाजिक स्थिति और सुरक्षा की भावना के लिए संकट उपस्थित करते हों और इन परिस्थितियों में आवश्यक तटस्थता बनाए रखने में कोई कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत में मेरे बहुत से सहकर्मी शहरी किंतु भूस्वामी मध्यवर्गीय परिवारों के हैं और वे हाल के भूमि सुधार कानूनों से, मुद्रा स्फीति से और प्रशासन तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग की संभावना से प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुए हैं। वे यह भी देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों से बहुत से क्षेत्रों में उन प्रभुता संपन्न किसान जातियों के नेता सत्तारूढ़ हो गए जिनको कि किसी पीढ़ी पहले ही एक पीढ़ी पहले ही उनके पिता नीचा समझा करते थे। प्रादेशिक तथा राज्य स्तरों पर राजनीतिक प्रभुता से प्रभु जातियों को आर्थिक तथा अन्य पुरस्कार प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही वह शहरी मध्यवर्गीय की सत्ता और प्रभाव में लगातार कमी हुई है। इन परिस्थितियों में यह समझ में आता है कि मध्यवर्ग और कुछ भारतीय समाज वैज्ञानिक सब परिवर्तनों के विरोधी हो जाते हैं और कुछ एक अन्य प्रकार के आत्मनिष्ठा में पढ़कर ऐसी उग्रतावादी विचारधारा के उत्साही प्रवक्ता बन जाते हैं जो उच्च जातियों और शहरी मध्यवर्ग को ही आधुनिक भारत की सब बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। विकासशील देश आज प्राचीन नवीन के बीच संघर्ष के रणस्थल हैं। पुरानी व्यवस्था अब न तो नई शक्तियों का सामना कर पाती है और न लोगों की नई आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर पाती है। पर वह मरणासन्न भी नहीं है, वास्तव में वह अभी तक जीवंत है। यह संघर्ष बहुत से अवशोभन, विवाद, कलह, मति भ्रम और कभी कभी रक्तपात को भी जन्म देता है। इन परिस्थितियों में समाज वैज्ञानिक को नितांत अतीत मोह के कारण पुराने अच्छे भले शांति पूर्ण दिनों की चाह का प्रलोभन होता है, पर पल भर विचार करते ही उसे विश्वास हो जाना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था भी संघर्ष रहित नहीं थी और वह जनता के बड़े बड़े वर्गों के साथ अमानवीय निर्दयता से पेश आती थी। ऐसा सैद्धांतिक रवैया है जो संघर्ष को असामान्य मानता है अथवा जो विज्ञान के नाम पर संतुलन को विशेष मूल्य प्रदान करता है, विकासशील समाजों के अध्ययन में बाधक हो सकता है, पर ठीक यही कार्य मूलकतावाद के अंतर्गत हुआ है। लीच ने संतुलन और एकीकरण के उलझाव के परिणामों की ओर संकेत किया है। अंग्रेज सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी प्राथमिकताएं, अवधारणाएं परेटो या मैक्स वेबर से लेने की बजाय डर्किम से लेने की प्रवृत्ति रही है। परिणाम स्वरूप वे ऐसे समाजों के पक्ष में अत्यधिक पूर्वाग्रह युक्त होते हैं जिनमें कार्य मूलक एकीकरण, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकरूपता, संरचनात्मक संतुलन के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे समाजों को जिन्हें इतिहासकार अथवा राजनीतिक वैज्ञानिक संभवतः ठीक ही मरणासन्न कहें, सामाजिक मानव वैज्ञानिक स्वस्थ और आदर्श रूप में सौभाग्यशाली मानते हैं। इसके विपरीत जिन समाजों में द्रुत परिवर्तनों की ओर ले जाने वाली गुटों और आंतरिक संघर्ष के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में मूल्यहीनता और विकृति मूलक क्षय की आकांक्षा की जाती है। संघर्ष को हर जगह सामाजिक जीवन में निहित ही माना जाना चाहिए। संघर्ष को दूर करने के लिए प्रत्येक समाज को स्थान मूलक युक्तियां प्रस्तुत करता है। वे कम या ज्यादा कुशलता से कार्य कर सकती हैं, अथवा युक्तियां एक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करें और दूसरे में न करें। संभव है कि कुछ समाजों में दूसरों की अपेक्षा अधिक संघर्ष हो, अथवा एक की समाज में एक युग की अपेक्षा दूसरे में अधिक संघर्ष हो। यह भी संभव है कि संघर्ष लगभग सारी संस्थाओं में समान हो, अथवा कुछ में अधिक बार होता हो, कुछ में कम, कुछ पदार्थों में घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा हो, कुछ को लेकर कम, पर संघर्ष सामाजिक जीवन का अपरिहार्य अंश है और समाज वैज्ञानिक को उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो वर्तमान संस्था मूलक उपायों द्वारा सुलझाए जा सकते हैं और कुछ ऐसे मूलभूत होते हैं जो संपूर्ण समाज व्यवस्था के लिए आशंका प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों प्रकार के संघर्षों में अंतर करना चाहिए। समाज व्यवस्था धीरे धीरे लंबे समय में बदल सकती है अथवा अचानक और ध्वंस के साथ, किंतु यह संभव है कि परिवर्तन की आकस्मिकता वास्तविक की बजाय दिखावटी अधिक हो और गतिमान शक्तियों को कुछ देर से पहचाना न गया हो अथवा उनके महत्व को गलत आंका गया हो। विकासशील देशों की यह विशेषता है कि उनमें ऐसा नेता मौजूद है जो पारंपरिक जीवन और संस्कृति में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए कृत संकल्प है और ये नेता अपने अनुयायियों की आशाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों को अभिव्यक्त भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी। जिन देशों में आबादी तेजी से बढ़ रही है उनमें से कुछ में यह आर्थिक विकास के लिए गंभीर अड़चन है। इन परिस्थितियों में पुरानी व्यवस्था में लौटने का अर्थ है तो केवल करोड़ों लोगों के लिए भुखमरी और कष्ट ही होगा। इसलिए विकासशील देशों में समाज वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन के विषय में निश्चित दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य होते हैं। कुछ इस विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में सम्मिलित भी हैं और भविष्य में अधिकाधिक संख्या में के इस भांति सम्मिलित होने की संभावना है, क्योंकि ये देश योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। विकास कार्य में समाज वैज्ञानिक या तो सरकार के नियमित कर्मचारियों के रूप में अथवा नीति निर्धारक समितियों के सदस्यों के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। पहली स्थिति में वे अन्य सरकारी कर्मचारियों की ही भांति हैं, सिवाय इसके कि वे समाज वैज्ञानिकों कार्यों में विभिन्न विकास मूलक माध्यमों और व्यक्तियों के कार्य के अध्ययन और मूल्यांकन के कार्य में लगे हुए हैं। यह आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसमें चाहे जितने अप्रत्यक्ष रूप से सही सरकार में अपने सहयोगियों के कार्य के संबंध में निर्णय निहित है, बहुत व्यवहार कुशल रिपोर्ट से अन्य विभागों के सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रखने में भले ही सहायता मिले, पर इस कारण विकास कार्य के मूल्यांकन का मुख्य कार्य पूरी तरह असफल हो जाए। दूसरी ओर गलतियों को ठीक ठीक दिखाने से न केवल विशेष विभाग और अफसरों के साथ संबंध बिगड़ जाए, बल्कि अन्वेषकों के लिए सूचना के स्रोत ही सूख जाएं। संग्रहित सूचना का सदा उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभव है कि उसमें विकास का अतिक्रमण हो। इस भांति यदि मूल्यांकन दल सरकारी तंत्र का एक अंग हो अथवा यदि स्वायत्त संगठन हो, तो भी मूल्यांकन के कार्य में तरह तरह की समस्याएं हैं। वक्त बीतने के साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले समाज वैज्ञानिक शायद यह पाए कि उनकी विशेषता भोथरी अथवा पुरानी पड़ गई है और उनकी नौकरशाही मनोवृत्ति तीव्र हो गई है। यदि वे बीच बीच में कुछ महीने विश्वविद्यालयों में बिताया करें, प्रबोधन पाठ्यक्रमों में विकास लें और सिद्धांततः कुछ रीति रिवाज संबंधी नवीनतम सामग्री पढ़ सकें, तो इससे सरकार और अनुशासन दोनों को लाभ होगा। किंतु सरकारी संपत्तियों के सदस्य बनने वाले शैक्षिक समाज वैज्ञानिकों की समस्याएं भिन्न प्रकार की हैं। सबसे पहले तो उन्हें यह निर्णय करना पड़ता है कि वे कितना समय तो समितियों को दें और कितना शिक्षण और अपने छात्रों को और अपने निजी अध्ययनों और शोध कार्य को। समितियों की सदस्यता के गढ़ और खतरे सुविदित हैं। व्यावहारिक होने पर भी सरकार की कठिनाइयों को देखने की ओर जनता के समक्ष भविष्य का आशाजनक चित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता और देश के बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की इच्छा, ये सब उसे एक हसमुख हाँ कहने वाला बना दे और परिणाम स्वरूप वह आधिकारिक समितियों का सदस्य बनता जाए। इसी प्रकार इस बात का कि सरकारें अब विविध विषयों पर बड़े परिणाम में तथ्य सामग्री एकत्र करती हैं, वे इस सामग्री पर उनका एकाधिकार होता है। यह अर्थ है कि समितियों तथा तथ्यों के बारे में ऐसी धारणाओं से प्रारंभ करती हैं जिनकी किसी बाहरी संगठन द्वारा जांच नहीं हुई है। शायद समितियों के लिए सबसे उपयोगी समाज वैज्ञानिक वे हैं जो यह जानते हैं कि सरकार की विकास संस्थाएं किस तरह काम करती हैं और किस तरह से सामग्री एकत्र करती हैं। शैक्षिक समाज वैज्ञानिकों की थोड़े समय के लिए अथवा विशेष कार्य के लिए सरकार में नियुक्त कई दृष्टियों से वांछनीय हो सकती हैं। इसमें समाज वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी और सरकारों के विभिन्न स्तरों पर नीतियों की किस तरह कार्यान्वित की जाती है और अधिकारियों तथा जनता के बीच संबंधी की अंदरूनी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में यह उनके लिए विकास का कार्य का क्षेत्र अनुभव होगा। वे उन लोगों से भी मिलकर बात कर सकेंगे जो सरकार के लिए प्राथमिक तथ्य सामग्री संग्रह करते हैं। पर समाज वैज्ञानिकों का एक सबसे महत्वपूर्ण काम उसके देश में अग्रसर सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना है। यदि वह इस कार्य में सफल होता है तो वह सामूहिक आत्मज्ञान में ऐसा योग देता है जो दूसरे उसके जैसे प्रतिक्षण के बिना सामान्यतः नहीं दे सकते, और कार्य को यदि दबाया न जाए तो यह संभावना है कि वह कर्म की ओर प्रवृत्त करें। समाज वैज्ञानिक यह काम विश्वविद्यालय में रहकर ही कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त संख्या में योग्य समाज वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाए। कुछ विकासशील देशों में सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतन तथा आकर्षक अन्य सुविधाएं और अधिक प्रतिष्ठा भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के विश्वविद्यालयों में आने में बाधक होती है। जब व्यापारिक संस्था और कारखाने भी समाज वैज्ञानिकों को शिक्षण और मूलभूत शोध से बहका कर ले जाने में सरकार से होड़ करने लगेंगे तो स्थिति में और भी बिगड़ने की आशंका है। किंतु शिक्षक और सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के उसके कार्य के पीछे अपने अनुशासन तथा अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता निहित है। समाज वैज्ञानिक के रूप में वह एक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान समुदाय का सदस्य है जिसका प्रत्येक सदस्य विषय को पढ़ने का और साथ ही उसके सीमांतों के विस्तार का भी प्रयास करता है। यह याद रखना उचित होगा कि उसकी अन्य प्रतिबद्धता अपने संपूर्ण देश और उसके विकास के प्रति तत्कालीन शासन किसी राजनीतिक दल अथवा स्थापित व्यवस्था के प्रति नहीं है। यह सही है कि सब विकासशील देश के सशक्त राष्ट्रवादी दौर से गुजर रहे हैं और कभी कभी यह अंधराष्ट्रवाद का रूप भी ले लेता है, पर अंधराष्ट्रवाद को अस्वीकार करने के साथ साथ हमें सावधान रहना चाहिए कि हम राष्ट्रवाद को भी न अस्वीकार कर दें और सामाजिक सुधार और विकास की बड़ी प्रबल प्रेरक शक्ति है, पर सामाजिक विकास के अध्येता के नाते समाज वैज्ञानिकों को यह भी देखना चाहिए कि राष्ट्र राज्य के अधिक व्यापक राजनीतिक तत्वों का उदय हो रहा है और उसके देश के तथा स्वयं के लिए जीवित रहने की सर्वोत्तम आशा है। ऐसा विश्व जिसमें एक अति राष्ट्रीय व्यवस्था ने राष्ट्रों के बीच युद्ध का और युद्ध के साधनों का निष्कासन कर दिया हो। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ समाज वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता मूलभूत है और अपने अनुशासन के साथ प्रतिबद्धता से उद्भूत होती है, क्योंकि निर्बंध सामाजिक अन्वेषण तानाशाही व्यवस्थाओं में न तो हो सकता है न पनप सकता है। अपने ही समाज का अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिकों के लिए यह विशेष रूप से सही है। लोकतंत्री प्रक्रियाओं की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप समाज वैज्ञानिक राष्ट्रीय विकास के साथ गहरा लगाव अनुभव करते हैं। जनसाधारण की अपेक्षाएं हर जगह बदलती गई है और वे द्रुत विकास के साथ साथ वर्तमान विशेषताओं में द्रुत और तीव्र कमी के द्वारा ही संतुष्ट की जा सकती हैं। जो विकास धनी लोगों को और अधिक धनी बनाता है और गरीब जनता की अवस्था वैसे ही रहने देता है, वह दीर्घस्थायी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देगा जो विकास को भी अटका देगी। इसलिए विकास के प्रतिबद्धता आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को घटाने की प्रतिबद्धता भी है। मैंने उन गुणों को गिनाया है जिन्हें मैं विकासशील देशों से आने वाले समाज वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक नहीं तो वांछनीय अवश्य मानता हूँ। इनमें मैं कभी वस्तुओं को संगतहीन पक्ष लेख देख सकने और अपने आसपास पर हंस सकने की क्षमता भी जोड़ना चाहूंगा, नहीं तो वे दंभी और अहंकारी हो जाएंगे और अपने आप को अमोघ मानने लगेंगे। समाप्त।